अगला बाब देखेंगे। अल हालातुल्लती ला यक्रहु फी हस्सौम, वो उमूर जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता। कौन से वाले? पहली बात, भूल चूक से खा पी लेना रोज़े को तोड़ता है ना मकरूह करता है, यानी नहीं टूटता। दलील, अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, नबी अकरम ने फरमाया, जब कोई भूल कर खा पी ले तो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि इसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। क्या पता चला? भूल के खाया तो रोज़ा पूरा करे, लेकिन अब ये नहीं कि याद आ गया तो भी खाते रहे। हाँ, वो कहते ना कि पहले भूले थे अब भोले बन गए। अच्छा, मुझे ये बात पढ़ते ही अपना एक बड़ा, यानी एक बड़ा खूबसूरत तजुर्बा याद आता है। बहुत पहले की बात है, मैं जब पढ़ती थी कॉलेज में तो मैं साइंस स्टूडेंट थी, और ये तो अल्लाह का कोई फैसला था कि मैं इस वक्त कुरान पढ़ा रही हूँ, वरना मुझे डॉक्टर बनना था। तो गर्मियाँ थी बहुत, मुझे याद है जून जुलाई के रोज़े होते थे। हमारा प्रैक्टिकल था उस दिन केमिस्ट्री का, और आपको पता है कि केमिस्ट्री में सब एसिड्स, और हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक, यानी एक्सपीरियंस ऐसे करते थे, लैब लेबॉर्ट्री में कई घंटे का एक्सपीरियंस था, कहीं आग जलाते थे, कहीं कुछ क्या कुछ होता था। तो खैर, मेरा रोज़ा था, रोज़ा ही रखना था मैंने। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ मैं बीच में वार्डन्स फिर रही होती हैं ना पानी पिलाने के लिए, हालांकि रमज़ान थे, लेकिन पता नहीं वो क्यों फिर फिरती होंगी। वो फिरी, मैंने एक दफ़ा पानी पिया, आराम से पिया, दूसरी दफ़ा पिया, पूरे 3 घंटे मैंने कई बार पानी पिया। और जब आखिरी दफ़ा पीने लगी, जब वक्त पूरा हो गया, फिर ख्याल आया कि मेरा तो रोज़ा था, तो फिर मैंने कहा ये मुझे अल्लाह ने पिलाया। तो अगर मैं खुद ही छोड़ देती कि नहीं नहीं मेरा रोज़ा है और मैं रोज नहीं रखती, बड़ा मुश्किल है, आज का दिन बड़ा प्रैक्टिकल है, तो फिर मुझे ये बोनस नहीं मिलता ना। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन जूं ही याद आ जाए फिर छोड़ दें, फिर दोबारा नहीं आप उसको कर सकते हैं। और ऐसे बातों पर इंजॉय करना चाहिए, मैं को हाय मकरूह है, हाय मेरा रोज़ा ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, नहीं, मैं तो खुश हुई मेरे अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा किया, और अल्लाह ताला फिर भी ऐसा कीजिए, मैं तो खुशी से ऐसे कामों पर तैयार हूँ। तो आप जैसा अल्लाह ताला से गुमान करेंगे, वो आपके साथ वैसा ही मामला इंशाअल्लाह ताला करेंगे। मिसवाक करने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। दलील, आमिर बिन रबिया से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में इतनी मर्तबा मिसवाक करते देखा कि गिन नहीं सकता। इसे बुखारी ने रिवायत किया, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट होता है ना इसमें भी, तो रोज़ा नहीं टूटता। जी, टूथपेस्ट का मसला जो है उसका, देखिए कोई चीज़ आप अंदर ना निकले, पहली चीज़ है, सिर्फ मुंह के अंदर टेस्ट जाने से रोज़ा बराह रास्त नहीं टूटता। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि उस टूथपेस्ट उसके गले में चली जाती है और हलक में उतरता है उसका टेस्ट, तो अवॉइड करना चाहिए। आप कहते नहीं फिर भी बास आती है मुंह में, बड़ा आसान सा तरीका इसका है, पहले से जिस ब्रश के साथ आप पेस्ट लगा के करते हैं ना, उसको पानी से गीला करके कर लें, हल्की सी खुशबू फिर भी होती है। मिसवाक है उसके ऊपर आप हल्का सा लगा लें, पूरी भर के मुँह भर के ना लगाएं, ठीक है। इसी से फिर यानी और भी कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, यदि अंदर अगर कुछ नहीं जा रहा आपके तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। गर्मी की शिद्दत से रोज़ेदार सर में पानी बहा सकता है, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता। दलील, हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक सहाबी ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, क्या आप रोज़े में गर्मी या प्यास की वजह से सर पर पानी बहा रहे थे? इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। तब सर पे भी जा रहा है, अगर कुल्ली भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह रोज़ा इससे नहीं टूटता, क्योंकि जब बंदा बहुत ज़्यादा अकल प्रस्त हो जाता है, फिर वो कहता है नहीं देखो मेरी तो स्किन में पोर्स भी हैं, अब इन पोर्स से पानी अंदर जाएगा, फिर मेरे सर की खाल जो स्कल उसके अंदर भी पोर्स हैं, तो अंदर कुछ भी गया तो फिर रोज़ा टूटता है। बस लोग कहते हैं कुछ भी अंदर जाए तो टूटता है, फिर तो आप सांस लेंगे तो भी रोज़ा टूटा, ऑक्सीजन तो अंदर जाती है ना। इस तरह की मतलब शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए। इसी पे बात कर लेती हूँ क्योंकि आगे आ रही है, यानी जैसे ये बात कर रहे थे ना हम कि रोज़े के मिसवाक और टेस्ट की बात है, इसी पे लिपस्टिक का मसला भी समझ लें, क्योंकि अलग से करेंगे तो फिर आप इसके साथ नहीं नोट कर पाएंगे। मिस लिपस्टिक का क्या मसला है? यानी लिपस्टिक का तो मसला छोड़े, मेरे साथ किसी ने एक बार ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाक्या हुआ, इंसिडेंट कह लें बल्कि इसको आप, कि एक दर्स में थी मैं, तो रमज़ान की बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि लिपस्टिक लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो मैंने कहा कि नहीं टूटता। तो एक औरत ही कहेंगी लेकिन उसके लिए तो मिरर देखना पड़ता है ना, है, मैंने कहा फिर, तो कहती वो शीशा देखने से भी तो रोज़ा टूट जाता है। यानी अब ये हिसाब लगा लें कि ये हमारी मतलब वो कौम है कि जिसको इल्म से कोई शगफ नहीं और सिर्फ हर एक को मसले सुलाने की बात है, तो ये बात समझने की है कि लिपस्टिक से एज इट इज़ नहीं टूटता, बल्कि हज़रत ईसा के बारे में आता है कि रोज़े की हालत में अपने होंठों पर तेल लगा लेते थे ताकि लोगों का इनका रोजेदार होना ना समझे। हम रोजे का ना मत रोजेदार होने का मतलब क्या समझते हैं? आवाजार। किसको मेरी बात समझ आई है? आवाजार क्या होता है? बेजार, पटके हुए, हाय रोजा, हाय रोजा, रोजा रोजा। और कुछ खवातीन तो माथे पे रुमाल भी बांध लेती हैं, सर पे दुपट्टा क्या बांधते हैं, वो पटका सा जो बांध लेते हैं, तेवरी चढ़ी होगी और रोजा रोजा रोजा। देखिए, किसी को पता ना चले कि आप रोजे से, ये बंदे के रब के मामले की बात है। बाद लोग रोजा रख के सारे लोगों के घर वालों की मुश्किल में डालते हैं। आप बल्कि इस नियत से अपने आप को फ्रेश दिखाएं कि कोई बात नहीं है। हाँ, सिर्फ अगर किसी को याद है तो वो खा लेते हैं, कुछ लोग लिप्स होंठ चबाते रहते हैं, अब उससे अगर अंदर टेस्ट आ रहा है गलत है वो तो वैसे ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन एज इट इज सिर्फ इस तरह कुछ मेकअप करने से नहीं टूटता। जी, अगली बात क्या है कि रोजे की हालत में मजी खारिज हो या इख्तलाम हो तो रोजा टूटता है ना, मकरूह होता है। अब ये टूटता है को ना आप प्लीज अपने बुक्स में ना लिख लें, वरना आप में से कुछ माशाल्लाह ये सोच लेंगे कि टूट जाता है लेकिन मकरूह नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, ना टूटता है ना मकरूह होता है। दलील, हजरत इब्ने अब्बास और हजरत इकरमा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रोजा किसी चीज के जिस्म में दाखिल होने से ना टूटता है ना जिस्म से खारिज होने से टूटता है। इसे बुखारी ने रिवायत किया, यानी कोई सिक्रीशन, अब हवा खारिज हो सकती है जिस्म से, रेस्ट रूम में इंसान जाता है, इसी तरह जिस्म से कोई सिक्रीशन आती है तो उसे रोजा नहीं टूटता। सर में तेल लगाने, कंघी करने या आंखों में सुरमा लगाने से रोजा मकरूह नहीं होता। हंडिया का जायका चखना, थूक निगलना और मक्खी के हलक में जले जाने से रोजा मकरूह नहीं होता। रोजेदार गर्मी की शिद्दत में कपड़ा पानी में तर करके बदन पर रख सकता है, इससे रोजा मकरूह नहीं होता। इन सब के दलाइल सुन लीजिए। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब तुम में से कोई रोजेदार हो तो उसे तेल कंघी कर लेना चाहिए। क्या पता इससे चलता है कि अपनी हालत ठीक ठाक रखो, बिल्कुल लोगों को बीमार ना दिखो तुम। हाँ, फिर हजरत हसन फरमाते हैं, रोजेदार के लिए नाक में दवा डाल लेने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते के हलक तक ना पहुंचे। नीज रोजेदार सुरमा भी लगा सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, रोजेदार घंडिया या किसी दूसरी चीज का जायका चख ले तो कोई हर्ज नहीं। हजरत अता ने कहा, रोजेदार अपना थूक निगल सकता है। हसन रदी अल्लाह अन्हों ने कहा, अगर मक्खी रोजेदार के हलक में चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। इससे लगता है ना कि ऐसे शोशे उठते होंगे, तभी तो इनके जवाब जो है वो दिए जाते थे। अगर किसी पर गुसल फर्ज हो लेकिन देर से उठे तो सहरी खाकर गुसल कर सकता है, अलबत्ता खाने से कबल वुजू कर लेना चाहिए। दलील, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहमहुल्ला से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। आयशा ने बयान किया, मैं गवाही देती हूँ रसूलुल्लाह इहतलाम के सबब से नहीं, यानी आपने क्लैरिटी की, वाजे की बात कि इहतलाम के सबब से नहीं बल्कि जिमा के सबब से हालत जुनाबत में सुबह करते और गुसल किए बगैर रोज़ा रखते, बाद में नमाज फजर से पहले गुसल फरमाते, फिर हम दोनों उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के पास आते। ये भी आपकी जौजे मुख्तरमा थी और उन्होंने भी यही बात कही। इसे बुखारी ने रिवायत किया। दूसरी दलील, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में खाना या सोना चाहते तो पहले नमाज की तरह का वुजू फरमा लेते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। हमारे यहाँ इस मसले में भी बहुत इफरात और तफरीत है। आप देखिए कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि इंसान पे कोई ऐसी हालत गुसल की है और आपके उस वक्त में इतनी गुंजाइश ही नहीं कि आप गुसल कर रहे हैं और आपका फिर खाना पीना रुकता है, वैसे तो सहरी खाए बगैर रोज़ा हो जाता है, अगर अल्लाह ताला हमारे साथ सख्ती करते ना फिर तो कर देते फ़र्ज़ के, भाई ठीक है तुम ये अपने आप को पाक करो और नहीं खाना खाते तो रोज़ा तो हो जाएगा। लेकिन रोज़े ही की आयतों में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करता है, सख्ती का मामला नहीं करता, तो कहा कि उस वक़्त फिर इंसान खा ले और हद ये है कि बस फजर की नमाज से पहले गुसल करके तो फिर नमाज पढ़ेगा। हाँ, इस हालत में नमाज छोड़ देना और सोते ही रहना कि चले आप सुबह उठ के तो शावर ले लेंगे, ये फिर दुरुस्त नहीं होगा, ये तो अल्लाह ताला की एक रुख्सत को मिस यूज़ करने वाली बात है। इसी तरह हमारे यहाँ इस हालत के बारे में एक अजीब कहानी है कि जितने कदम चले जाएं उतने फरिश्ते बददुआ करते हैं, और मैंने देखा कि लोग इतनी अहमकाना हरकतें करते हैं कि एक खातून ने कहा कि फिर मैं बड़े बड़े कदम लेती हूँ कि मेरे कम कदम गिने जाएं। आप महसूस करते हैं कि उम्मत को कितनी ज़रूरत है तालीम देने की, और ये शरीयत किसकी फैलाई हुई है? ये लोगों की फैलाई हुई है जो बैठे सुन उठते बैठते फतवे देते और ऐसी बातें करते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मजबूरी की बात है, और हाल जो भी हालत है, लाकिन अभी सोते भी थे खाते भी थे। रोजे की हालत में बीवी का बोसा लेना जायज है, बशर्ते के जज्बात पर काबू हो। दलील, उमर रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि एक रोज मेरा जी चाहा और मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लिया। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, आज मैंने बड़ा गलत काम किया है, रोजे की हालत में बोसा ले लिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा बताओ अगर तुम रोजे की हालत में कुली कर लो तो फिर? मैंने अर्ज किया, कुली में क्या हर्ज है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर किस चीज में हर्ज है? सुभान अल्लाह, आपका अंदाज देखिए, किनायतन, यानी आपने वो लफ्ज़ जुबान पे नहीं पसंद किया, क्योंकि बाज़ दफ़ा तालीम के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती हैं और शरण इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन उसके दौरान कोई इंसान के जहन में गलत बात या उसको मजाक और हंसी और उस पर कोई खीखी खीखी करना, ये अदब के खिलाफ बात है। तो अल्लाह के नबी ने मसले का हल भी बता दिया और वो बात का जिक्र नहीं किया। तो पता क्या चला कि अगर जज्बात पे काबू हो तो जायज़ है। एक और रिवायत से हमें पता चलता है कि एक बूढ़े शख्स ने जब इसकी इजाज़त मांगी तो आपने दे दी, लेकिन एक जवान ने जब इस काम की इजाज़त मांगी तो आपने नहीं दी। कोई दूसरा शख्स पास बैठा दोनों बातों को देख रहा था, उसने कहा कि अल्लाह के नबी ये क्या बात है, आपने एक को इजाज़त दी दूसरे को नहीं दी? तो आपने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि पहला शख्स बूढ़ा था? यानी अमूमन जज्बात पे काबू हो सकता है और बाद में दूसरे को नहीं होगा, तो ये तबीयत पे भी डिपेंड करता है। तो बहरहाल इसके अंदर यानी कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत जो है बरतने की ज़रूरत नहीं होती। अगली बात, रोज़े में पछने लगवाना जायज़ है। इसको देख लीजिए, पछने है ये लफ्ज़, इसके ऊपर आप ज़बर डालें वरना आप पता नहीं इसको किस तरह पढ़ेंगे। दलील, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में पछने लगवाए। इसे बुखारी ने रिवायत किया। अब ये पछने क्या होते हैं? इलाज के तौर पर सुई, ब्लेड या उस्तरे के साथ जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलवाने को पछने लगवाना कहते हैं। आज के दौर में इसको ऐसे समझ लें कि जिस्म से गंदा खून निकलवाना। अरब उस दौर में दो तीन तरीके इलाज होते थे, मसलन जब फतूर होता जैसे खून में, जैसे हाई ब्लड प्रेशर आप कह लें, या किसी को स्किन डिजीज़ होती तो कट्स लगाते जहाँ भी ब्लड वेंस होती हैं, तो उसके नतीजे में गंदा खून निकल जाता तो बाद में फिर साफ खून जिस्म में रहता। इसी तरह जोंके लगती थी, एक लीच जिसको बोलते हैं जानवर, वो जिस्म में रख के ऊपर डाल दिया जाता है, पतली सी होती है तो वो फिर पी पी के इतनी मोटी हो जाती है, तो उसको जैसे सिरिंज से खून निकाला जाता वो चीज़ जो है वो उसमें आती। अब यहीं से हम बात करेंगे इंजेक्शन के बारे में कि क्या इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटता है कि नहीं। मुझे नहीं मार याद कि आगे बात अलग से आ रही है नहीं, लेकिन मैं इशारतन कर देती हूँ। देखिए कि इंजेक्शन लगाने के दो तरीके होते हैं। एक इंजेक्शन होता है दवा के लिए लगाना, सर में दर्द है, बुखार है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे सिर्फ आपके जिस्म में मेडिसिन जाती हैं। दूसरा इंजेक्शन होता है जो ताकत के लिए जाता है, जिसमें ड्रिप्स आ जाती हैं, जिसमें कोई ऐसी विटामिंस, कोई ऐसी प्रोटीन, कोई चीज़ जाती है। तो दवा के लिए इंजेक्शन लगता है तो इंशाल्लाह उससे रोज़ा नहीं टूटता। बाकी रह गया एनर्जी का, ताकत का, तो वो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अब रोज़ा रखे और ताकत का इंजेक्शन या ड्रिप लगवा के बैठ जाए, एनर्जी उधर से पूरी हो जाए, तो इसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है।